ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे। महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इस 6 दिवसीय महोत्सव का विषय है वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर सुविधाओं उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। श्री मोदी ने दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत ने लद्दाख में 2 नई काउंटी स्थापित करने की चीन की घोषणा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह चीन के होतान विभाग में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा सुन चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में कल मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में भारतीय अंचल में अवैध चीनी अधिकार को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के यारलुंग संगपो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। भारत और ईरान ने नई दिल्ली में 19वें भारत ईरान विदेश मंत्रालय विमर्श में चाबहार बंदरगाह, कृषि सहयोग, व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ ही सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के लोगों के आपसी रिश्ते बढ़ाने समेत द्विपक्षीय संबंधों के समग्र पहलुओं की समीक्षा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने बैठक की सह अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के हर संभव प्रयास करेगी। श्री चौहान महाराष्ट्र के नासिक जिले में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित किसान सुसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ने की विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आशा व्यक्त की है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 2047 तक तेजी से वृद्धि होगी। नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 रिपोर्ट जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पूरे देश में लॉजिस्टिक्स ढांचे को बेहतर ढंग से समझने में रिपोर्ट मदद करती है। उन्होंने लैंगिक समावेशिता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बिहार में गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में आरंभ होगा। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां से विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। मुख्य प्रकाश पर्व समारोह 6 जनवरी की मध्य रात्रि आयोजित होगा। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।